दिव्यों सज्जनों, स्वामी दयानंद जी के द्वारा लिखित आर्य उद्देश्य रत्नमाला में से वर्ण और आश्रम व्यवस्था के बारे में चर्चा कर रहे थे। पिछले बार हमने आश्रम व्यवस्था में चार तरह की जो आश्रम है, जो कि जीवन के अलग अलग स्टेजेस होते हैं, ये कोई लाइफ का डेस्टिनेशन या गोल नहीं होते, अलग अलग स्टेज होते हैं। और वो चार स्टेज जिसे हम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम के रूप में जानते हैं, और उन चारों आश्रमों के में से का जो उद्देश्य है कि व्यक्ति का, इंसान के जो नेचुरल एस्पिरेशन है, जो इच्छा है, वो उसको अगर आप क्लासिफाई करें कि हर इंसान जो चाहता है वो क्या बोलता है नहीं बोलता वो मैटर नहीं करता, उसके दिल में क्या पाने की इच्छा है उसको हम चार चीजों में क्लासिफाई करते हैं, और उसको हम कहते हैं पुरुषार्थ चतुष्टयम। पुरुषार्थ चतुष्टयम मतलब चार ह्यूमन एस्पिरेशन है, धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष। इन चारों को भोगने के लिए ये चार चीजें, धर्म का मतलब कुछ मेरिटस थिंग या कुछ वर्च्यू, कोई अच्छा काम करना जिससे कि अच्छी चीज मिले, ये हर ह्यूमन बींग का एस्पिरेशन, इच्छा है। इवन बुरे से बुरे आदमी भी, गंदा से गंदा आदमी भी जो कुछ करता है वो भी उसके अंदर की भाव में यही है कि मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूं। इवन जो टेररिस्ट टेरराइज करते हैं वो मिस इन्फॉर्म्ड हो सकते हैं, मिस गाइडेड हो सकते हैं कि धर्म क्या है, उनको बताने वालों ने जिस तरह गाइड किया हो, पर उनके अंदर जो एस्पिरेशन ये है कि मैं जो कुछ कर रहा हूं अच्छा कर रहा हूं। ये जो अच्छा करने का भाव है वो हर इंसान में होता है, वो अच्छा काम को हम धर्म कहते हैं। अर्थ मतलब अर्निंग और होर्डिंग वेल्थ, पैसा कमाना, पैसा मतलब धन संपत्ति जो कुछ भी है, ये भी हर इंसान की नेचुरल प्राकृतिक रूप से उसकी इच्छाएं हैं, उसका भाव है अर्थ। और काम अपने इंद्रियों को संतुष्ट करना, प्लीज करना है, जो नेचुरल डिमांड से इंद्रियों का, सेंसेस का, उसको फुलफिल करना, ये भी हर इंसान की प्राकृतिक नेचुरल एस्पिरेशन है। और चौथा होता है मोक्ष, मीन्स गेटिंग फ्रीडम। फ्रीडम कहां से? इवन नॉर्मल लाइफ में भी हम हमेशा छटपटाते हैं, जहां भी हमें कोई डोमिनेट करने की कोशिश करता है, कोई कमांड करता है, तो हम उसको रिएक्ट करे न करे अंदर अंदर तो छटपटाहट होती है, दुख होता है। क्यों? वो मेरे फ्रीडम पर चोट होता है। तो हर व्यक्ति जो चीजें उसे पसंद नहीं उसे छुटकारा पाना चाहता है। और अगर आप बारीकी से जाएं, अंदर लोगों के अंदर घुसें, तो देखेंगे कि हर व्यक्ति दुख से छुटकारा पाना चाहता है, दुख से आजादी चाहती है। ये जो परमानेंट सल्यूशन है कि हमेशा दुख से आजादी मिले, ये मौत से हर आदमी डरता है, हर व्यक्ति डरता है, उससे उसे आजादी चाहिए। पैदा होने से हर आदमी डरता है, उससे उसे आजादी चाहिए। और जब व्यक्ति परमानेंटली उस चीजों से आजादी पाने की कोशिश करता है उसे हम कहते हैं मोक्ष। तो ये जो चार ह्यूमन एस्पिरेशन है उसको पूरा करने के लिए अलग अलग स्टेजेस बनाया गया कि अलग अलग लेवल पर, अलग अलग स्टेजेस पर आप इसे पूरा कर सकते हैं। एक व्यक्ति अगर सही ढंग से लाइफ को डिसिप्लिन बना के, जैसे आप पढ़ाई करते हैं, जब आप जॉब पर जाते हैं आप एक रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं, आप एक रूटीन बनाते हैं कि इस रूटीन के वे में काम करूंगा तो मुझे इतने अचीवमेंट मिलेगा। आश्रम व्यवस्था इसी तरह अपने लाइफ को डिवाइड किया गया, एक खास तरह के रूटीन बनाया गया, कर अगर करें तो आप चारों चीजों को पा सकते हैं। उनमें से हमने पिछले बार ब्रह्मचर्य मतलब जो सीखने का स्टेज है, अपने आप को तैयार करने का एज है, क्या करने के लिए, भोगने के लिए, छोड़ने के लिए, हर चीज के लिए। फिर गृहस्थ आश्रम की चर्चाएं हमने की कि जब आप स्टूडेंट लाइफ से ऊपर उठते हैं तो आप शादी करना व विवाह करना वो दरवाजा है गृहस्थ आश्रम में जाने के लिए, जहां आपको अर्थ और काम धर्म कमाना, उसको अपने सुख के लिए यूज करना और उसको अच्छी चीजों के लिए यूज करना। जब खुद के लिए यूज करते हैं तो वो काम बनता है, जब आप सोसाइटी के लिए यूज करते हैं तो वो धर्म बन जाता है। जो चीजें अपनी खुशी के लिए करते हैं वो काम है, सेंसुअल प्लेजर है। जब वही चीजें आप दूसरों के लिए करने लग जाते हैं तो वो धर्म बन जाता है। ये तीन चीजों को पाने के लिए धर्म, अर्थ और काम गृहस्थ जीवन हम यूज करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे वानप्रस्थ और संन्यास। पिछले बार हमने चर्चा की थी कि वानप्रस्थ का सिंपल मीनिंग है जो रिटायरमेंट एज होता है, कि आप काम करके जो काम करना था कर लिया, जो कमाना था कमा लिया, बच्चों को बड़ा बनाना था बच्चे बड़े बन गए, वो अपनी लाइफ जीने लग गए, तो आपको अपनी प्लानिंग करनी चाहिए शुरू से कि मैं इसके बाद क्या करूंगा। पिछली बार हम चर्चा कर रहे थे, बहुत सारे लोग क्योंकि बहुत डूब जाते हैं अपने मैटेरियल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, उनको कभी ध्यान नहीं रहा कि उनको कोई प्लानिंग भी करना है कि आफ्टर रिटायरमेंट क्या करना है। और उसका रिजल्ट होता है बहुत सारे लोग जब आप काम छोड़ देते हैं तो बड़े डिप्रेशन में चले जाते हैं या घर में ही हंगामा करते रहते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है करें क्या करें, दुखी होते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने इसीलिए ये प्लानिंग की थी कि अगर आप प्री प्लानिंग करके लाइफ को जीते हो तो आप हर सुख को हर समय सुख पा सकते हो, अपने आप को यूज कर सकते हो अच्छी तरह। उसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि इंसानी जो नेचर है वो दो तरह का होता है, एक होता है प्रवृत्ति मूलक, एक निवृत्ति मूलक। प्रवृत्ति मतलब टू परस्यू, कुछ चीजें पाने के लिए जब हम कोशिश करते हैं, जो इच्छा होती है उसको प्रवृत्ति कहते हैं, और जब हम अपने आप को कहीं से हटा देते हैं अपने मन को, उसको निवृत्ति कहते हैं। जब प्रवृत्ति में हम जाते हैं तो हम मैटर की ओर जाते हैं, क्योंकि सेंसेस एक्टिव होते हैं और आपकी इंद्रियां बाहरी दुनिया से जुड़ते हैं, दुनिया को एंजॉय करना, उनके साथ डूबना, उनके साथ मिलना, ये प्रवृत्ति है, ये इंसानी नेचर है। ये बुरा है अच्छा है ये कोई बात ही नहीं है। इसी तरह निवृत्ति भी इंसान का ही नेचर है, जहां से वो उब जाता है, थक जाता है, परेशान हो जाता है, वहां से अपने आप को वो विड्रॉ कर देता है। जहां उसको प्रॉब्लम होता है, जहां उसको दुख होता है, वहां से वो विड्रॉ कर देता है। पर जब आप समझ ही नहीं पाते हो कि आपको ये अच्छा लगता है कि बुरा लगता है, आप मजबूर हो, जैसे कोई ड्रग एडिक्टेड है, उसको समझ में नहीं आता है कि ड्रग अच्छा है कि बुरा है, बस जब ड्रग लेता है वो अनकॉन्शियस हो जाता है, उसको लगता है शायद यही लाइफ है। कभी कभी हम अपनी समझ यूज ना करने के कारण हम समझ नहीं पाते हैं कि मेरे लिए अच्छा क्या है बुरा क्या है, बस दुनिया चल पड़ती है तो हम भी चल पड़ते हैं, फिर हमारे पास कोई रास्ता नहीं होता है क्या करें, और उसी का परिणाम होता है रिटायरमेंट के बाद लोग जिस तरह के दुख में, परेशानी में, ऊपर से वो कैसा भी बिहेव करें, अंदर बहुत सारे लोग जिस तरह के प्रॉब्लम में आते हैं। जब हम चीज को समझते हैं कि लाइफ दो चीजों से है, एक प्रवृत्ति एक निवृत्ति, क्योंकि आप दो चीजों से बने हुए हो, एक बॉडी एंड एक सोल, आत्मा और शरीर, जो कुछ शरीर के लिए करते हो वो प्रवृत्ति है, क्योंकि आपको बाहरी दुनिया से इन्वॉल्व होना पड़ता है, जुड़ना पड़ता है। जब आप आत्मा के लिए करते हो निवृत्ति है, बाहरी दुनिया से हटना पड़ता है, और इसी को कहते हैं जब आप अंदर की ओर जाने की कोशिश करते हो, बाहरी दुनिया से अपने आप को हटाने की कोशिश करते हो, उसी को हम कहते हैं वानप्रस्थ आश्रम या रिटायर्ड लाइफ। ये एक साइकिल है कि आप भोगते हो, जब आप भोगते हो थोड़ी देर के बाद आप बोर हो जाते हो, फिर छोड़ देते हो, फिर नई चीजें लेते हो, कपड़े स्टोर में जाते हो, नए कपड़ा देखा अच्छा लगा तो आप खरीद लेते हो, खरीद के पहनते हो। पहले दिन जिस मजे के साथ आपने खरीदा, जिस जो खुशी आपको मिली पहली बार जब आपने वो नए ड्रेस पहना, वो खुशी और 15 दिन के बाद या 15वां बार या 16वां बार जब आप उस ड्रेस को पहनते हैं, उसमें फिर वो खुशी नहीं रहती है। धीरे 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 वो कम होता जाता है। और 2-4 साल अगर वो ड्रेस टिक गया, आपको आप तो इरिटेशन होने लगता है उसको देख करके, क्लोजेट में बंद कर देते हैं। हर हमेशा सोचते हैं कब मौका मिले इसको पहनूं, पर क्या करें, और नई नई ड्रेसें आ जाती हैं, क्लोजेट में जागर नहीं होता है। फिर ढूंढते हैं कहां इसको डोनेट करूं। डोनेट मतलब आज इरिटेशन हो गया, इसको छुटकारा पाना है। हर चीज से यही है कि आप पहले तो उसको एंजॉय करते हो, पर नेचुरली उसके प्रति आपकी रिनुंसिएशन का भाव आ जाता है, उसको छोड़ने का भाव आ जाता है। हर चीज के साथ यही चीजें। पहली बार आप नौकरी के लिए पढ़ाई पूरी करने के बाद जब नौकरी ढूंढने गए, कितनी तड़प के साथ, कितने एक्साइटमेंट के साथ आप जॉब ढूंढ रहे थे, और आपके एक बढ़िया जॉब मिल गया, कितनी एक्साइटमेंट के साथ पहला दिन आप ऑफिस में गए, बढ़िया कपड़े बना करके, सूट पहना करके, जैसे भी आपको अच्छा लगे आप गए, कितना मजा आ रहा था। 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक स्ट्रेस था, टेंशन था, तभी एक्साइटमेंट था। 2-4-5 साल के बाद ऐसे लगता है कोलू के बेल के तरह जाते हैं, मन उब चुका होता है। अब कोई नया काम चाहिए, कोई नई चीजें चाहिए, ये तो उब चुका होता है। आदमी के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, मजबूरन वहां काम करता है, पर ढूंढता रहता है कि कोई इससे बढ़िया ऑप्शन, बढ़िया पैसा मिले तो इसको छोड़ दूं। नहीं मिलता है तो करते रहते हैं, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी बन जाते हैं लोग। जब मजबूरी पड़ते हैं कहते कि हम तो अहिंसावादी है, गांधी का नाम ले लेते हैं। तो वैसे ही मजबूरी है तो एक ही कंपनी में वफादारी दिखाते रहते हैं, तब तक जब तक कोई दूसरा मन को अच्छा लगने वाला काम ना मिले और उसके हिसाब से आपको पैसा ना मिले। ये मन का स्वभाव है, वो एंजॉय करता है पर छोड़ देता है। लाइफ में यही चीजें हैं। अगर किसी चीज को आप जिंदगी भर पकड़ के बैठो, वो मजबूरी हो जाता है, उसको ढोना पड़ता है। जब छोड़ देना, नेचुरली छोड़ देना, तो वो आपके लिए अच्छा है। वो जो नेचुरली छोड़ने की प्रकृति है, प्रवृत्ति है, उसे हम वानप्रस्थ कहते हैं। लॉ ऑफ नेचर है, वी मस्ट एंजॉय बिकॉज वी आर हियर। क्योंकि संसार में है, दुनिया को भोगना चाहिए, दुनिया भगवान ने बनाई है आप लोगों के लिए, आप नहीं भोगेंगे तो कौन भोगेगा। सोचिए अगर दुनिया में कोई इंसान नहीं होती, पशु पक्षी प्राणी कोई भी नहीं होता, बने ही नहीं होते, तो क्या यूज है ये सुंदर फूलों की, पानी की, फलों की, अलग अलग टेस्ट वाले मीठा वाले फलों की, ये अनाज की जो 4-6 महीने में क्रॉप्स होते हैं, धान हो, गेहूं हो, जो भी आप खाते हो, और उसमें फल आते हैं, फल के सूखने के साथ पेड़ ही सूख के नष्ट हो जाता है, यूजलेस हो जाता है ना। आप इसको यूज करते हो, ये प्री प्लान्ड है, ये ईश्वर की सिस्टम में है, ये सब आपके लिए ही, आप नहीं भोगोगे तो बनाई नहीं होता है। तो भोगना है क्योंकि हम संसार में आए हैं, पर दूसरी बात भूल जाते हैं कि हमें जाना भी है। तो अगर जाना भी है तो उसकी तैयारी भी तो करो, वो रिनाउंसिएशन उस जाने की तैयारी है। क्योंकि 24 आप जिंदगी भर तो हम यहां रुकने वाले नहीं है, लाखों साल के लिए, अनंत काल तक तो रहने वाले नहीं है। पैदा हुए हो तो भोगो, पर मरना भी तो है ना, तो उसकी भी तैयारी जो है वो रिनाउंसिएशन की है। और वो क्योंकि अचानक आप मरेंगे, कोई पता तो नहीं कब हम मरेंगे। मरने का मतलब क्या होता है, जो कुछ कमाया सब छोड़ के जाओ। अगर छोड़कर आखिर में जाना ही है, क्यों ना उसकी तैयारी हम पहले से करें, प्लानिंग के साथ करें। जरूरी नहीं कि आप अपना घर बार किसी को दे करके चले जाएं, मेंटली आप प्रिपेयर रहें कि मेरा नहीं, ये मेरा नहीं, मेरा नहीं, इस भाव लाने के लिए। जो अपने लिए इकट्ठा कर रखा है थोड़ा सोसाइटी के लिए बांटना शुरू करें, जो कमजोर हैं जिनके पास कम है उनको देना शुरू करें। जाना तो है ही, छोड़ के ही जाना है, अब चाहोगे तो भी नहीं रख सकते। तो वानप्रस्थ उसकी तैयारी है, गृहस्थ भोगने का है जो आपने कमाया, अब वानप्रस्थ उसकी तैयारी है जो आप जाने वाले हो, जो छोड़ के जाने वाले हो। सो So renunciation must follow the enjoyment, but the cycle of to be completed. ये साइकिल तो कंप्लीट होना ही है ना, पैदा हुए फिर मरेंगे, पैदा हुए बच्चा बनेंगे, फिर टीनेज बनेंगे, फिर आप यंग बनेंगे, फिर आप मैच्योर्ड बनेंगे, फिर आप ओल्ड बनेंगे, फिर धीरे धीरे आप जाएंगे, ये साइकिल है, फिर पैदा होंगे। तो ये साइकिल तभी फुलफिल होगा ना जब आप एंजॉय भी करो और रिनाउंस करो। पर अगर पकड़ के बैठ गए, रेस्टोरेंट में खाना खाए गए और वहीं बैठ गए, या आप कहेंगे मैं रोज इसी रेस्टोरेंट में जाऊंगा, कितना बोरिंग लगेगा आपको कि पैसा खर्च करके आप एक ही रेस्टोरेंट में बार बार जाते हैं। नए नए रेस्टोरेंट जाना चाहिए, नई नई एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, लाइफ है। पर तभी होगा ना जब आप एक रेस्टोरेंट छोड़ोगे, तभी तो दूसरे रेस्टोरेंट में जाओगे। तो एक स्टेज छोड़ोगे तो दूसरे तरह की चीजें एंजॉय करोगे। तो ये जो साइकोलॉजिकल लॉ, यही उस वानप्रस्थ को डिफाइन करता है। तो वानप्रस्थ में हम कब जाएं, व्यक्ति को कब जाना चाहिए, रिटायरमेंट लेना चाहिए। आजकल आपकी जब आपकी कंपनी आपको निकाल देती है तब आप कहते हैं मेरे रिटायर्ड हो गया। जब आपको सरकार कहता है कि बस आपकी शिक्षा भारत में फिक्स है, आपका मन हो ना हो काम करने का, वो आपको रिटायर्ड कर ही देगा जबरदस्ती, आप हो गए, जब काम के लायक नहीं है जाओ। यहां तो चलो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप अपनी मर्जी से छोड़ सकते हो, पर कभी आपकी बॉडी साथ नहीं देता है, कभी ऑफिस वाले कंपनी भी आपकी साथ नहीं देती है, मजबूरन छोड़ना पड़ता है, प्लानिंग के साथ नहीं। तो कब छोड़े, कहते हैं कि जब आपके चमड़ी ढीले पड़ने लग जाए, आपकी स्किन जब लूज होने लग जाए। ये प्राचीन काल की व्यवस्था, आजकल मत करिएगा, ये तो उसके फिर कंटेम्पररी अर्थ नहीं है। जब आपके बाल सफेद होने लगे, आज तो 20-22 साल के बच्चों को भी बाल सफेद होने लग गए, तो शास्त्रों को कभी भी लकीर के फकीर के तरह मत लेना, उसकी सेंस को समझना। ये नहीं कि आपके बाल पक गए, अब आजकल तो 25 बाप के बाल काले हैं और बेटे के बाल सफेद दिखते हैं, ये भाव नहीं है। और जब आपके बच्चे बच्चे वाले बन जाए, इसको समझने के लिए आप मन श्लोक देखिए क्या हमारे शास्त्र कहते हैं। गृहस्थ तो यदा पश्येत वलिपलितम आत्मनः अपत्यस्य चापत्यम तदारण्यम समाश्रयेत। मनुस्मृति का श्लोक है, कहते हैं जब गृहस्थ आदमी, घर गृहस्थी जिसके बाल बच्चे जो शादीशुदा है, खूब एंजॉय किया 25 साल 30 साल 40 साल जब तक उसका एज था, जब देखे अब बुढ़ा होने लगा है, बाल पकना चमड़ी ढीले होने का सिंपल मतलब है कि जब आपको लगे कि आप फिजिकली आप कमजोर होने लगे हो, इसका अर्थ नहीं कि सचमुच बाल पक जाए। पहले टाइम पर बाल पकता था, आजकल नहीं पकता है, अलग अलग तरह के खान पान रहन सहन लाइफस्टाइल है, तो उसका कारण है कि आप बीमार 20 साल में भी हो सकते हैं। जब आपको लगे कि आप फिजिकली मेंटली आप ज्यादा एक्टिव नहीं हो पाते, दूसरा जब अपत्यस्य च अपत्यम, जब आपके बच्चों के बच्चे हो जाएं, मतलब आपके बच्चे मां बाप बन जाएं, वो खुद पेरेंट्स बन जाएं, तो आप समझ लीजिए कि आपका टाइम हो गया है इस फैमिली लाइफ से रिटायरमेंट लेने का। फैमिली में जो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी वो पूरी हो गई। क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी, कि बच्चों को पालना, उनको उनके प्रति जो आपकी जो जिम्मेदारी है, बच्चे बड़े हो गए, अब वो खुद मां बाप बन गए, वो अपने बच्चों को पालेंगे, आपका काम नहीं है उनके बच्चे पालना। तो आप आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो गई, आप रिटायरमेंट ले सकते हो, आपकी फैमिली में कोई जरूरत नहीं है। जबरदस्ती घुस के जरूरत साबित कराओ वो अलग बात है। बच्चे 40 साल के हो चुके हैं, 50 साल के हो चुके हैं, उनके बच्चे भी बड़े हो गए तब भी घुसते रहते हैं, तुमने अपने बच्चे को ये बताया, तुमने बच्चे को ये नहीं खिलाया, तुमने ये, तुम अपनी लाइफ जियो ना, उनके लाइफ वो फिर कब जिएंगे, वो खुद का डिसीजन कब लेंगे। मेरी तो आप रेस्पेक्ट नहीं करते हो, मैं तुम्हारा बाप हूं मां हूं, अरे मां बाप फिर वो कब मां बाप बनेंगे, तुम्हारे जीते जी वो बुढ़े हो जाएंगे, उनको तो कभी मौका नहीं मिलेगा, अपने बच्चों को अपनी इच्छा से पालने का? तुम क्यों इंटरफेयर करते हो? क्योंकि तुम्हारे पास कोई प्लानिंग नहीं है अपने लाइफ के लिए। दूसरों के लाइफ में इंटरफेयर करते हो क्योंकि अब क्या करो सुस्ता नहीं है। इसीलिए कहा कि यही सही टाइम है जब तुम्हारे बच्चे बच्चे वाले बन जाए, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। अब तुम जो कर रहे हो जबरदस्ती कर रहे हो। कोई भी अच्छा या बुरा काम अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं होता है देवियों सज्जनों, स्थान काल पात्र के अनुसार उसकी अच्छाई या बुराई आंकी जाती है। अच्छे से अच्छे काम को अगर बुरे गलत जगह पर गलत टाइम पर गलत आदमी के साथ करेंगे तो बुरा रिजल्ट देता है। मेरा काम है धर्म की बात बोलना, प्रवचन करना। आप कहेंगे बड़ी अच्छी बात करते हैं आप, पर कभी मैं आपको रास्ते में देखूं, आप स्टोर में दुकान में कुछ काम कर रहे हैं, मैं पहुंच गया आपको मिल गया और शुरू हो गया जी लेक्चर देना, गीता में तो ये आत्मा परमात्मा की बात कही। दो बार आप ऐसे ही मुझे टकराए, तीसरे बार मुझे देख के या तो मुंह छुपाएंगे या अगर आप मुंह फटे मेरे मुंह पर बोलेंगे आचार्य जी आप अपने लिमिट में रहिए, ज्यादा मत तंग करिए। अब ज्यादा परेशान है तो आगे से हम आएंगे भी नहीं आर्य समाज, अगर स्टोर में घूम घूम के गीता का प्रवचन मुझे करने लग गए। भरे वो स्टोर में बेचारा सामान खरीदने गया है, आप उसको आत्मा परमात्मा की ज्ञान कोई बुरी बात नहीं है, पर अच्छी चीज को गलत जगह पर गलत बात पर दे रहे ना। बात समझ में आती है? खाना खिलाना अच्छी बात है, पर आदमी खाया पिया अच्छा आया है, बोल रहा है कि मैं खाना खाया हूं। बहुत सारे लोग हैं, लोगों के घर जाने में कभी कभी ऐसे लोगों के घर जाने में कतराते हैं क्योंकि आप ज्यादा बीमार पड़ जाएंगे। क्यों? उनको अतिथि सत्कार करने का बड़ा शौक है और ऐसा शौक चढ़ा है कि आपको बिना खिलाए छोड़ेंगे नहीं। आप कह दो कि मैं खा कर आया हूं, पेट भरा है, प्लीज चार बार प्लीज बोलो नहीं, हमारे घर से तो कोई बिना खाए जा ही नहीं सकता। अभी क्या है, ये जुलुम है धर्म के नाम पर। ये आपके लिए धर्म है, पर आप उस अच्छी चीज को अतिथि सेवा नामक जो बढ़िया चीज है आप इसको इतना मिसयूज करते हो, दूसरों को नुकसान पहुंचा के सोचते हो कि मैं अतिथि सेवा कर रहा हूं। खाना खिलाते समय कुछ लोग बहुत जबरदस्ती करते हैं, और खाओ और खाओ। बेचारा दो रोटी खाने वाला आपके घर आया, आप इसको चार रोटी के बाद भी पांचवा डाल रहे हो। नहीं, आप तो कुछ नहीं खाया है और तो खाना पड़ेगा। आप खुश हो रहे होंगे कि मैं तो अतिथि सेवा कर रहा हूं, नहीं, आप धर्म का मिसयूज करते हो नोइंगली अननोइंगली। अच्छी चीज को गलत जगह इस्तेमाल कर रहे हो, गलत टाइम पर इस्तेमाल कर रहे हो। अतिथि सेवा में बुरी बात नहीं है, खिलाने में बुरी बात नहीं है, पर आप गलत टाइम पर गलत अच्छी चीज को यूज करते हो। इसी तरह बच्चों का ख्याल रखने में कोई बुराई नहीं है, पर गलत टाइम पर रख रहे हो। अब उनके काम है कि वो अपने बच्चों का ख्याल रखेंगे, आपका जिम्मेदारी। फिर मैं क्या करूं, ये है वानप्रस्थ आश्रम, उसकी चर्चा करेंगे कि आप क्या करेंगे। पहले ये समझ लीजिए कि जब आपके बच्चे बच्चे वाले हो गए और आप फिजिकली थोड़ा कमजोर होने लग गए, आपके घुटने में दर्द होना शुरू हो गया, आपके आंखों में चश्मा चढ़ने लगे वगैरह वगैरह वगैरह, तो आपको अब कमाने की या परिवार की चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो आप वानप्रस्थ में चले। वानप्रस्थ का मतलब ऐसा नहीं है कि वानप्रस्थ का जो लिटरेरी मीनिंग है कि वन मतलब जंगल, प्रस्थ मतलब रहना, जंगल की ओर प्रस्थान कर गए, मतलब जंगल। पहले जमाने में लोग जंगल की ओर चले जाते थे। क्यों चले जाते थे? ऐसा कोई नहीं है कि वानप्रस्थ का मतलब आप ह्यूस्टन छोड़ के आसपास जंगल में चले जाओ, वो तो फिर जानवरों के साथ रहना पड़ेगा। पहले जमाने में जंगल और गांव, जो हैबिटेट एरिया और जो नॉन हैबिटेट एरिया, ये दो अलग अलग नहीं होते थे। ये गांव है, वो गांव के साथ ही जंगल है। आजकल तो काट कूट के सब साफ कर दिया सिविलाइजेशन के नाम पर। अब क्योंकि आप अगर धनी हैं, जैसे अमेरिका में होता है, बच्चे अपना घर ले लिया, आपके अपने घर हो गया, तो कोई झगड़ा नहीं है। अब भारत में तो शहरों में घर खरीदना ही मुश्किल बात है, पैसे भी लोगों के पास थोड़े ही, कि वानप्रस्थ सिर्फ पैसे वालों के लिए कि दो घर हो, नहीं। तो क्या करते थे, अब बच्चे अपने घर में रहे, ऐसा नहीं कि उनको कोई दूसरा घर, आपके पास इतनी सामर्थ्य नहीं कि आप दूसरा घर दो, खुद निकल जाते थे गांव के बाहर, जंगल ही होता था, थोड़ा अकेले जगह पर अपनी जो भी घर, छोटा सा घर अपने लायक, जिसको आप झोंपड़ पट्टी कहिए, जरूरी नहीं कि आप झोंपड़ी में ही रहना है, मतलब अपने लायक छोटा सा घर होता था, बना के वहां रहते थे। प्राचीन जल में घास फूस के घर में रहते थे, क्योंकि उनको कोई दिखा, अब गृहस्थ आश्रम में थोड़ा शोइंग नेचर रहता है, अपने पड़ोसियों को दिखाना है, अपने इनको दिखाना है, अपने उनको दिखाना है, ईगो का प्रॉब्लम रहता है। अब वानप्रस्थ में आप चले रिनाउंसिएशन, मृत्यु की ओर यात्रा पर चले, उसमें क्या दिखाना है, अब तो लाइफ को ठीक से जियो। इसीलिए वानप्रस्थ था, घर से निकलो, बगल में जो कोई 2 किलोमीटर, आधा किलोमीटर नहीं, 100-200 मीटर पर जंगल होता था, वहां आप अकेले में शांति से रहोगे। आपको गांव की या शहर की जिम्मेदारी से कोई लेन देन नहीं है, आपको घर के फैमिली मैटर में कोई ज्यादा हस्तक्षेप कर, आपकी फैमिली बन गई है। इट मीन्स इंस्टेड ऑफ बीइंग स्टक एंड टेथर्ड टू द वर्ल्ड एंड इट्स ऑब्जेक्ट्स, वन शुड वॉलेंटरीली रिनाउंस देम आफ्टर हैविंग हैड वन्स फुल शेयर ऑफ एंजॉयमेंट। जब आप अपने लाइफ को अच्छी तरह जी जाते हो, आप खुद जब वॉलेंटरीली उससे रिटायरमेंट लेते हो, दूसरे अपने अगली पीढ़ी को रास्ता दे देते हो कि अब तुम अपना डिसीजन लो, अपना घर खुद चलाओ, हाँ कोई हेल्प चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए, हम हमेशा तैयार हैं, जब भी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई 24 घंटे के लिए अलग हो गए, हमेशा के लिए कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं है, आप हमेशा उनके साथ हो, जब भी सुख में दुख में। वहां रह के आप क्या करते हैं, अब आप जो कुछ करते हैं समाज के लिए करते हैं, बड़ों के लिए, एक बड़े ब्रॉडर सेंस में करते हैं। पहले आपका जो दायरा था वो नैरो था, मैं, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरे घर वाले वगैरह, अब आपका दायरा जो है वो थोड़ा ब्रॉडर होने लगेगा, आपकी सोसाइटी, आपका देश, आपका समाज, आपका ज्ञान, उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं जिसकी चिंता आप करते हैं। सो इन दिस आश्रम ए पर्सन ग्रेजुअली, उसकी करना क्या होता है, प्रैक्टिस करना होता है ग्रेजुअली टू विथड्रॉ फ्रॉम द मैटेरियल एंजॉयमेंट। यह आसान नहीं है, पर धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करते हैं कि फैमिली में हमारा इन्वॉल्वमेंट कम हो, वो खाली समय को क्या करें, सोशल एक्टिविटीज में दें, अपने आप को स्वस्थ रखने में दें, क्योंकि जब आप बुजुर्ग होते हैं तो आपको अपनी हेल्थ कॉन्शियस भी, हेल्थ को भी ठीक रखने की जरूरत है, अपने आप को स्वस्थ रखने में टाइम दें, सोसाइटी के लिए टाइम दें, और ईश्वर के प्रति अपने भक्ति भाव को बढ़ाने की कोशिश करते रहें। इससे आप मैटेरियल वर्ल्ड से आपका रिनाउंसिएशन की प्रैक्टिस होती जाएगी, डिटैचमेंट की प्रैक्टिस तो आसानी से नहीं है, तो आपके लिए एक लंबा पीरियड है, 15 साल, 20 साल, 25 साल तक आप इस रिटायरमेंट लाइफ में जी सकते हो। और ये जो रिटायरमेंट लाइफ है वो तैयारी है, ये प्रिपेरेशन आप करती हो नेक्स्ट जो चौथी स्टेज आप जीने वाले हो संन्यास आश्रम के। आप ऐसे समझ सकते हो जो वानप्रस्थ आश्रम है वो एक ट्रांजिशन स्टेज है। ट्रांजिशन कहां से कहां, कि मैटेरियल लाइफ से अब स्पिरिचुअल लाइफ की ओर आपकी यात्रा शुरू हो जाएगी। पहुंचते पहुंचते तो 15-20 साल, 25 साल लग जाएगा, पर आपकी यात्रा अब शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपकी अब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि बच्चे नहीं कहेंगे कि आप तो ध्यान में बैठ गए, मुझे स्कूल छोड़ने जाना था, बच्चा बीमार पड़े और आप मंदिर में जाकर के कथा सुन रहे हो, ये नहीं हो सकता। अब वो जिम्मेदारी खत्म हो चुकी है आपकी, अब आपकी यात्रा जर्निंग है फ्रॉम मैटेरियल लाइफ टू स्पिरिचुअल लाइफ, एंजॉयमेंट टू रेनुंशिएशन। कल तक आप जिसको भोग रहे थे, अब धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे उसको कम करते जाए, बिल्कुल छोड़ने का कोई मतलब नहीं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हैं, कर सकते हैं, धीरे धीरे छोड़ते जाएं, क्योंकि अब आप फिजिकल डिमांड भी कम होता जाता है और आपको अगले स्टेज की तैयारी भी करनी है। अटैचमेंट टू डिटैचमेंट। पहले हम गृहस्थ में थे, बहुत ज्यादा अटैच थे, बच्चों से, परिवार से, रिश्तेदारों से, पैसे से, घर से, कपड़ों से, हर चीज से अटैच थे। अब धीरे धीरे उसकी तैयारी करें डिटैचमेंट की। पहले सिर्फ फैमिली ही मेरी होती थी और किसी से कोई मेरा लेन देन नहीं है। अब फैमिली से कम्युनिटी की ओर यात्रा करेंगे। अब मेरी फैमिली सिर्फ चार मेंबरों का नहीं है, अब मेरी फैमिली में 4,000, 4,00,000, 4 करोड़ भी हो सकते हैं। कम्युनिटी को की और सेवा करने की यात्रा है, और ये यात्रा है, ये जर्नी है नैरोनेस टू ब्रॉडनेस की ओर। पहले मैं और मेरे चारों तरफ की दायरे में मैं जीता था, मैं ऊपर से कुछ भी बोलूं करूं, पर एक्चुअली मेरा सारा एक्टिविटीज का जो गोल होता था, मैं और मेरे आसपास जो भी मेरे बीवी बच्चे रिश्तेदार जो भी, ये इन्हीं के चारों होता था। अब थोड़ा ब्रॉडनेस में आएंगे, थोड़ा बाकी लोगों के बारे में भी सोचेंगे और दूसरों के बच्चों के बारे में देखेंगे, दूसरों के बारे में सोचने लगेंगे। ये जो स्टेज है, स्टेज को प्रैक्टिस करते करते पता नहीं चलेगा आप कब आप हायर स्टेज में पहुंचने की रास्ता बना चुके हो। बिल्कुल वैसे ही जब आप ब्रह्मचर्य आश्रम में, वानप्रस्थ आश्रम, जब आप ब्रह्मचर्य आश्रम में थे, मतलब जब आप स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे, आप उस लाइफ को तो जीते थे, एंजॉय करते थे, पर उसके साथ साथ आप तैयारी करते थे, अपने आप को प्रिपेयर्ड करते थे गृहस्थ आश्रम में, पैसा कमाने का और उसको खर्चने की तरीका पर। कमाने के लिए आप प्रोफेशनली अपने आप को स्किलफुल करते थे, और जब कमाते थे उसको काम अपने भोग के लिए यूज कैसे किया जाए उसके लिए आप यूज करते थे। वानप्रस्थ आश्रम में करना क्या है आपको? रिटायरमेंट जब आप होगी, जब आप रिटायर्ड लाइफ हो, तब क्या करेंगे? आजकल जंगल जाने की तो जरूरत नहीं है आपको, बस अपने लाइफ को अपने ढंग से जिए, फैमिली मैटर में इंटरफेयर ना करें। बच्चों की शादी करा दी, उनके बच्चे हो गए, अब आप फ्री हैं, तो क्या करें? मनुस्मृति कहता है, स्वाध्याय नित्य युक्त स्यात् दान्तो मैत्रो समाहितः, दाता नित्यमान मन मना दाता सर्वभूतानुकंपः। जब आप रिटायर्ड हो, वानप्रस्थ का कंटेम्परेरी वर्ड आप रिटायर लीजिए। रिटायरमेंट में सीधा इतना होता है कि आप काम छोड़ देते हैं, वानप्रस्थ में आपको कोई काम नहीं छोड़ना होता है। प्राचीन काल की जो रिटायरमेंट थी उसमें आप कोई काम नहीं छोड़ते थे, सिर्फ अटैचमेंट छोड़ते थे, सिर्फ मेंटली आप जो कुछ छोड़ना ही छोड़ते थे। फिजिकली आप पूरी एक्टिव रहते थे पर आपका गोल अलग हो जाता था। तो आप क्या करते थे? दोबारा पढ़ाई लिखाई में ध्यान दें। स्टूडेंट लाइफ में जो आप पढ़ते थे, आगे जाकर के मां बाप प्रेशराइज करते थे, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लॉयर बनना है, ये बनना है, इसकी पढ़ाई करो, बाकी चीजें गौण था। अब आप जो पढ़ेंगे खुद के लिए पढ़ेंगे, पहले भी पढ़ते होंगे, सेल्फ स्टडी तो हमेशा आप करते रहते थे। अब पूरी तरह आप पढ़ेंगे, स्वाध्याय में ध्यान देंगे, समझने के लिए कि मैं क्या हूं, मेरे जीवन क्या है, मेरा बैकग्राउंड क्या है, मैं कहां से आया, कहां जाऊंगा, इस संसार इसके इसको समझने के लिए। और अपने नित्य युक्त, अपने इंद्रियों को नियंत्रित करने की प्रैक्टिस करेंगे, और दामैत्र दूसरों के साथ मैत्री भाव, फ्रेंडली बिहेवियर बढ़ाएंगे। कल तक जिनको नहीं जानते थे उनसे आवाज आप फ्रेंड बनेंगे, सोशलाइजेशन के लिए नहीं, सोशलाइजेशन तो अपने आप हो जाएगा जब आप 50 लोगों के बीच में रहेंगे, उनकी भला करेंगे, हेल्प करेंगे, अपने आप होगा। खाली सोशलाइजेशन तो बेवकूफी होती है। जब आप दूसरों के सुख दुख में साथी होते वो अपने आप सोशलाइजेशन होता जाता है। और दाता, अब आप देंगे, लेने का काम हो चुका है, जितना कमाना था गृहस्थ आश्रम में कमा चुके हैं, अब बिल्कुल लेने का कोई सवाल नहीं उठता है किसी भी तरह का, पर अब आप देने की आदत पूरी तरह बनेगी। जितना हो सके जो आपके पास है उसको आप बांटने की कोशिश करिए, एक दिन में सारा मत बांटिए, आगे आपको 40-50 साल और भी जीना है। ये नहीं कहा कि मैंने, अब एक दिन में सारा बांट दीजिए, वो मेंटली आप प्रिपेयर होइए। दान देना फिजिकली इतना मुश्किल नहीं है, मेंटली मुश्किल है। जा मेंटली प्रिपेयर हो कि मुझे छोड़ना है छोड़ना है। जिसको दान देने की बिल्कुल आदत नहीं, बहुत बुरा लगता है $2 $2 भी किसी को देना, तो कम से कम पेनी देने से शुरू करिए। आप देखेंगे जब आप देंगे आपको कितना मजा आने लगेगा। जैसे जैसे आप देते जाएंगे आपको देने में और मजा आने लगेगा। देने का अपना मजा होता है, जब देंगे तभी पता चलेगा। जैसे खाने का अपना मजा होता है, जब खाएंगे तभी पता चलेगा ना खाने का मजा क्या है। अब क्या है कि कमाने के मजे में इतने डूबे हुए हैं, अब देने के मजा नहीं आता है। वो मेंटली आप अपने आप को प्रिपेयर करेंगे कि मुझे देना है। शुरुआत करिए छोटी छोटी हेल्प में। उन किसी को हेल्प करना है, किसी को चैरिटी करना है, छोटे छोटे हेल्प से शुरू करिए, फिर आप देखेंगे। अभी चेन्नई में एक व्यक्ति 40-50 साल से तो काम कर रहे थे, पर आजकल क्योंकि सोशल मीडिया बहुत हो गया है तो अब बहुत सारी चीजें छुपता नहीं, सामने आ जाता है। एक कॉलेज में लाइब्रेरियन है और वो जितना तनख्वाह कमाते थे वो हर महीने जो भी उनका, आजकल एक लाइब्रेरियन असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर के बराबर का तनख्वाह मिलता है, 1.5 लाख से ज्यादा कमाता है, तो सारा तनख्वाह वो दे देते थे आसपास के ऑर्फनेज, जो अनाथालय होता था दे देते थे, और खुद की गुजारा के लिए अभी भी देते हैं, रिटायर्ड अभी भी वो नहीं हुए हैं, और खुद की कमाई के लिए वो शाम को अलग से रेस्टोरेंट में वो बॉय का काम करके कमाते थे, उससे अपनी गुजारा करते थे। दिन भर की कमाई वो सारा चैरिटी में दे देते थे। ठीक है, उनको उसमें मजा आता है देने में, उनको अब उसमें इतना आनंद आता है कि उनको देने में ही मजा आता है, हमें नहीं आया, पर अब ये रिटायर्ड लाइफ में हम कोशिश कर सकते हैं। और दूसरा है, he must always give in charity, not accept gift from others and have mercy on all living beings, और सभी प्राणियों के प्रति उसके अंदर दया भाव हो। अगर उसको समराइज करके आज के तारीख में बताएं, ये मॉडर्न लाइफस्टाइल में, कोई ह्यूस्टन में रहता है, कोई ऑस्टिन में रहता है, कोई दिल्ली बॉम्बे में रहता है, वो कैसा कैसे वानप्रस्थ आश्रम जिए, तो एंगेज इन फुल टाइम सेल्फलेस वर्क, सोशल सर्विस और क्रिएटिव वर्क, अपने आप को बिजी रखिए, फिर आपके बच्चे भी आपसे खुश रहेंगे, आपके स्पाउस भी आपसे खुश रहेंगे, नहीं तो आप बार बार फिर घुसेंगे ना उनके, इंटरफेयर करेंगे। प्रैक्टिस स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, स्पिरिचुअल मतलब जिसकी बात अब कर रहे थे, ईश्वर से अपने आप को जोड़ने की कोशिश करते रहिए। खाना सिंपल खाएं, कपड़े भी सिंपल पहने, खाना सिंपल खाएं, क्योंकि आपकी बॉडी अब अलाउ नहीं करता है कि अब हेवी खाना खाएंगे। क्लॉथिंग सिंपल इसलिए पहने क्योंकि अब आपको शो करने के, ईगो सेटिस्फाई करने की जरूरत नहीं है, किसी को जलाने की जरूरत नहीं है, किसी के अंदर जले से फील कराने की जरूरत नहीं है, आपकी यात्रा दूसरी अब हो गई है। जितना करना था 25-30 साल आपको खूब मिला, उसमें आपने जितना करवाना था करवा दिया, अब आप शरीर को जो अच्छा लगे वो कपड़े पहने, सिंपल कपड़े पहने। कंट्रोल माइंड एंड सेंसेस, मन और इंद्रियों को कंट्रोल करने की प्रैक्टिस करें। रिड्यूस एक्यूमुलेशन, इकट्ठा करना कि जो आदत हमारी पड़ चुकी थी उसको छोड़ना मुश्किल है, ये आदत हैबिट हो चुका है, पर उसको कम करने की कोशिश किया जा सकता है, एक्यूमुलेशन को कम किया जा सकता है। जैसे हमारे कपड़े हैं, बिलोंगिंग है, फूड इनटेक है। अब ये इस देश में तो क्या, जहां जहां पैसा आता है वहां वहां बीमारी आ जाती है, होर्डिंग की बीमारी, धीरे धीरे एडिक्शन बन जाता है बहुत सारे लोगों को। ले आते हैं, क्लोजेट में भर देते हैं, यूज नहीं होता है, फिर 15-1 महीने के बाद फेंक देते हैं, कपड़ों को 2-4 साल के बाद फेंक देते हैं, कुछ लोग तो फेंकते भी नहीं, इतनी आदत हो गई, लाते हैं भर देते हैं, लाते हैं भर देते हैं, यूज 1% भी नहीं होता है और घर तो भरा रहता है। बहुत जरूरत से ज्यादा अटैचमेंट हो चुका है, उससे छुटकारा, डेवलप लाइकिंग फॉर सॉलिट्यूड। अब तक तो 2-4 लोग ना घिरे हुए हो मन नहीं लगता था, अब अकेले रहने की आदत डालनी चाहिए। अकेले रहने का अपना मजा होता है, पर ये मजा तभी आएगा ना जब आप उस टेस्ट को क्रिएट करेंगे। हर चीज के लिए आपको टेस्ट बनानी पड़ती है जी, अपने आप कोई चीज नहीं होता है। पहली बार जब आपने ये पिज्जा बर्गर खाया होगा, आपको पता नहीं, मुझे लगा ये तो क्या बकवास खाना है, इंडियन लोग मसाले वाले चीज खाते हैं, इसमें ना कोई खास टेस्ट है ना कुछ है, पता नहीं कैसे लोग पागल हैं। पर जैसे अब खाते गए क्योंकि खाना होता है, खाते गए, अब तो ऐसा लगता है पिज्जा बर्गर से बढ़िया खाना कुछ नहीं होता है। टेस्ट आप क्रिएट करते हैं, किसी भी चीज की टेस्ट आप क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह अकेले रहने की अब हमारी आदत नहीं रही, मजबूरन रहना पड़ता है, पर अगर आप ये प्रैक्टिस करें मजबूरी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप अकेले रहने के भी मजा ले सकते हैं। वैसे भी गृहस्थ आदमी को भी चाहिए जब मौका मिले कम से कम अकेले, अकेले का मतलब अकेले, ये आजकल गैजेट भी आजकल आपके बच्चों से आपके रिलेटिव से ज्यादा क्लोज हो चुके हैं। अब तो हमें इंसान भी जरूरत नहीं पड़ता, हम वो फेसबुक से लेकर ट्विटर से लेकर पता नहीं क्या क्या में चिपके रहते हैं। अब तो हम वर्चुअल वर्ल्ड में ज्यादा रहते हैं और इंसानी वर्ल्ड में कम रहते हैं। अकेले का मतलब जहां आपके पास कोई लिंक ना हो, कोई मीडिया ना हो, कोई रिलेटिव हो ही नहीं, ना टीवी, ना फोन, ना सेलफोन, ना रेडियो, ना कुछ भी ना, आप अकेले हो। कभी प्रैक्टिस करिए, पांच मिनट की प्रैक्टिस करिए, जब घर में बच्चे न हो या कोई ना हो, अकेले हो, शांति से अकेले रहिए, कोई ना हो, ना बीवी, ना पति, ना पत्नी, कुछ कोई भी नहीं, कमरे बंद करके अकेले 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा कोशिश करिए, देखिए आपको कितना ज्ञान बढ़ेगा, कितना आपका मन में कितने सारे परिवर्तन आएंगे। अगर ये आप बढ़ा सकते हैं घंटों, आप कहेंगे हम तो कभी कभी दिन भर रहते हैं, जब आपकी स्पाउस कहीं चले जाते हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, छुट्टी है, वो आपके मजबूरन रहना पड़ता है, वो भी अकेले नहीं रहते हैं, टीवी के साथ चिपके रहते हैं, लैपटॉप के साथ चिपके रहते हैं, फोन के साथ चिपके रहते हैं, वो अकेला नहीं है। अकेले का मतलब आप अकेले हैं, किसी के सहारे के बिना, सिर्फ आप और आपके साथ आप और कुछ नहीं। ये प्रैक्टिस वानप्रस्थ में करने की जरूरत है। रिमेन हेल्दी, खाना आप अच्छा खाएंगे, शरीर का ध्यान रखेंगे तो हेल्दी रहिए, टॉक लेस। इस एज में ज्यादातर लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं आजकल, रिटायर्ड लोग सबसे ज्यादा बोलते हैं, क्योंकि काम धंधा कम है, आपको सुनाएंगे, आप सुनाने के लिए जाओ, आपको बुलाएंगे कुछ बोलो, आप प्रवचन दोगे, प्रवचन के बाद आपको वो 10 मिनट प्रवचन दो तो आपको 20 मिनट का वो उल्टा सुना देंगे, वो रिटर्न गिफ्ट देंगे आपको। बहुत बोलने की बीमारी है ये रिटायर्ड एज में, क्यों, काम कुछ नहीं है, इधर उधर कुछ सुना उसको सुनाते रहेंगे, उगाली करते रहेंगे। आपको पता है वानप्रस्थ आश्रम का दूसरा नाम क्या है, जो वानप्रस्थ आश्रम में रहते हैं उनको क्या कहते थे, मुनि। मुनि का मतलब होता है जो मौन रहता है। मौन का अपना फायदा है, कभी करके देखिएगा, साइलेंस, सिर्फ वाणी से नहीं, मेंटली भी धीरे धीरे आप साइलेंट होते रहने की कोशिश करिए, चुप रहने की। कभी कभी बोलना भी पड़े तो भी चुप हो जाइए, मत बोलिए, शांत होइए, बड़ा फायदा है जी, आपकी स्ट्रेस कम करेगा, आपकी आपको कितना रिलैक्स करेगा आपको पता नहीं है। पर कम से कम इस स्टेज में तो हर व्यक्ति को यह प्रैक्टिस करने की जरूरत है, कम से कम बोलें, ज्यादा से ज्यादा ग्रहण करें, एंड रेंडर सर्विस विथ ए सेंस ऑफ ड्यूटी एंड स्माइल। सेवा ज्यादा से ज्यादा करें मन के भाव से, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती, खाना खिलाएं तो खुशी से खिलाएं, ये सोच के खिलाएं कि जो खा रहा है वो आप पर एहसान कर रहे हैं, आप उस पर एहसान नहीं कर रहे हो। किसी को हेल्प करते हो ये सोच के हेल्प करो कि वो जो है आपसे हेल्प लेता है वो आप पर एहसान करता है, न कि आप उस पर एहसान करते हो। देवियों सज्जनों, कभी भी आप किसी को खाना खिलाते हो, हेल्प करते हो, चैरिटी करते हो, अगर इस भाव से आप करते हो कि सामने वाला एहसान ले रहे हो, आप दे रहे हो, आप बहुत पाप करते हो। उस दान का, उस सेवा का, उस खिलाने का कोई मूल्य नहीं है, उल्टा आप अपने आप को अंदर से बहुत खराब बनाते हो, बहुत निम्न स्तर का बनाते हो। हमेशा ध्यान रखिए, आपका दान तब दान होता है जब कोई लेता है, लेने वाले के कारण आपको पुण्य मिलता है, आपका दान होता है। इसलिए आप वो एहसान माने आपका, वो उसकी मर्जी है, वो उसकी इच्छा है, पर आपको लगे कि आप एहसान कर रहे हो, आप पाप करते हो। हमेशा जिसको देते हो उसके सामने झुको, ये तुम्हारी भलाई है, उसकी क्या भलाई है वो जाने। तुम्हारी भलाई है कि जिसकी हेल्प करते हो विनम्रता के साथ हेल्प करो, जिसको देते हो विनम्रता के साथ दो, जिस पर दया करते हो खुद पर दया हो रही समझ के दया करो, देखने उसकी खुशी आपको कितने मिलेगी और आपके कैरेक्टर में, आपकी पर्सनालिटी में क्या चेंज आएगा, आप कितने अच्छे इंसान बनेंगे, अंदर से बनेंगे, और ईश्वर की कृपा सचमुच आप पर कितनी होगी, बहुत ज्यादा होगी। ये जरूरी है कि आप दूसरों की सेवा करें ये सोच के कि सामने वाला आपको मौका दे रहा है सेवा करने के लिए। और जब आपको ये फीलिंग होगी ना, फिर आप किसी को खाना देते समय, हेल्प करते समय आपके मुंह से मुस्कुराहट होगा, फिर आप अकड़ के नहीं दोगे, फिर आप स्माइलिंग के साथ दोगे। वो स्माइलिंग ट्रेंड स्माइलिंग नहीं होगा, नेचुरल स्माइलिंग होगा जो आपके दिल से निकला होगा। आप स्माइल क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपकी खुशी हो रही कि आप दे रहे हो, कोई आपका खाना ले रहा है, कोई आपसे हेल्प ले रहा है। ये खुशी आपको फायदा करेगा, उसको क्या फायदा हुआ होगा ही होगा, और ईश्वर आप पर जरूर कृपा करेंगे, और आप अपने आप पर भी बड़ी दया करोगे। अगर किसी को कुछ देते समय अगर आप अपने आप को छोटा समझते हो, हम तो कभी कभी कम्युनिटी में भी देखते हैं, मंदिरों में भी देखते हैं, यहां भी समाज के लोगों के पैसे समाज में आते हैं, समाज में लोग खाते हैं, तब भी देने वालों के इतना अकड़ होता है, ऐसा लगता है मानो खाने वाले बेचारे पशु हैं। नहीं, ये गलत भाव है। ये तो समाज का पैसा है, पर खुद भी दो तो भी झुक करके दो, विनम्रता से दो, दूसरों को कि एहसान मानो, न कि खुद को एहसान मनाने वाला मानो। ये किसी को बड़ा नहीं करता जो देता है। अगर आप को लगता है कि आप तैयार नहीं हो इन चीजों के लिए, रिटायरमेंट के लिए, तो पार्शियल रिटायरमेंट लो, थोड़ा थोड़ा छोड़ना शुरू करो, थोड़ा फैमिली को के प्रति अटैचमेंट कम करो, थोड़ा काम पैसा कमाने की काम करो, ग्रेजुअली इंक्रीज योर इन्वॉल्वमेंट इन सोशल वर्क। धीरे धीरे आप देखेंगे आप इधर से छूटते गए, उधर से बढ़ते गए, एक दिन आएगा आप पूरी तरह नैरो माइंड से हटके अब ब्रॉड माइंड में चले जाएंगे। जब आप चले जाएंगे वानप्रस्थ में, जब आप सक्सीड कर जाएंगे, नेक्स्ट लेवल हम अगले बार चर्चा करेंगे, तो आप सन्यास के लिए तैयार हुए मिलेंगे। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग पूछते हैं हम क्या करें, कैसे ईश्वर को पाएं, कैसे मेडिटेशन करें, कैसे मन को दूसरों से हटाए। करने की जरूरत नहीं है, अपने आप होगा। ये ग्रेजुअल होता है, स्लो मोशन में होता है, धीरे धीरे होता है, अचानक कुछ भी नहीं होता है। और हमारे ऋषि मुनि ने वो रास्ता बताया कि स्टेप बाय स्टेप जाओ, आपको कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं। आप अपने आप देखेंगे कि एक दिन ऐसा आएगा, एक मोमेंट ऐसा आएगा जहां पूरी तरह तैयार हो, सबके बीच में रहते हो पर आपको किसी से कोई अटैचमेंट नहीं है, आप सबके सब कुछ भोगते हो पर आपका कोई उसके प्रति इंटरेस्ट नहीं है। इसका मतलब है कि आप वो सन्यास के लेवल पर आ चुके हो। उसकी बात हम अगले बार करेंगे कि सन्यास स्टेज क्या होता है और उसमें हमारी एक्टिविटी क्या होती है। पर यह बड़ी जरूरी है कि हम वानप्रस्थ आश्रम को लिटरली विथ स्पिरिट ले, अपने रिटायर्ड लाइफ को एक अच्छा लाइफ बनाए जिसमें खुद का भी फायदा हो, दूसरों के लाभ हो। और इसी के साथ यहीं विराम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।